Godlywood Studios presents ब्रह्मकुमारीज पॉडकास्ट। जिंदगी बने आसान।
नमस्कार दोस्तों, ओम शांति। स्वागत है आप सभी का हमारे प्रोग्राम जिंदगी बने आसान में। दोस्तों, हल्की फुल्की सी जिंदगी है, बोझ तो ख्वाहिशों का है। रियलिटी ये है, कहीं ना कहीं हम अपनी इच्छाओं के प्रति इतना ज़्यादा दबाव में आ गए हैं कि हम भूल चुके हैं कि ज़िंदगी तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। ज़िंदगी का दूसरा नाम ही है खुशी। इस बात के साथ आज के प्रोग्राम की हम शुरुआत करते हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर गिरीश पटेल जी। ओम शांति।
नमस्कार।
वेलकम टू आवर शो। डॉक्टर साहब, हमारा पूरा एपिसोड चला, पिछला एपिसोड स्किज़ोफ्रेनिया पर हमने डील किया था। हमने जाना कि किस तरह से ये बीमारी होती है, हमने ये भी जाना कि उसके प्रकार कितने हैं, साथ ही साथ कुछ ऐसे साइड इफेक्ट्स भी जाने हमने। अब मैं जानना चाहती हूँ डॉक्टर साहब कि इसका मेडिकल ट्रीटमेंट किस प्रकार है, क्योंकि अगर उसके बारे में थोड़ा सा हमें पता चल जाए तो हम डॉक्टर के पास जाने से डरेंगे नहीं।
नहीं, वंडरफुल, आपने शुरुआत एक तो बहुत अच्छी की है कि जिंदगी हल्की है। जिंदगी हल्की है, हमने ख्वाहिशों से उसको भारी बना दिया और फिर प्रॉब्लम में आ गए, है ना, फिर ये बीमारियां होने लगी। वंडरफुल
जी।
अच्छा, तो जो ट्रीटमेंट है तो वास्तव में तो भी पहला नियम हमने आगे भी कहा, फिर से मैं रिपीट करता हूँ कि जितना जल्दी ट्रीटमेंट करो अच्छा है।
ओके,
है ना। तो कैंसर की तरह फर्स्ट स्टेज में अगर ट्रीटमेंट किया जाए तो क्यूरेबल है, ऐसे ही सिक्सोफ्रेनिया को भी आप तुरंत इलाज कर लो, पूरा इलाज कर लो तो वो क्यूरेबल है
जी।
जब पूरा इलाज नहीं होता है और जब वो रिलैप्स होता है, दोबारा हो जाता है, फिर दिक्कत होती है, जिसको कहते हैं क्रॉनिक केस, की भी लंबा चला किस्सा। अच्छा, अब दवाइयों की जो बात है कि इसमें दवाइयाँ बहुत उपयोगी है।
अच्छा।
जो पुरानी दवाइयाँ थी ना वो अलग थी। मुझे भी याद है कुछ साल पहले, समझो आज से 30 साल पहले करीब, जब पेशेंट्स को दवाइयाँ देते थे ना, तो रिलेटिव से कहेंगे कि पेशेंट ठीक हो गया, लेकिन वो है ना रोबोट जैसा हो गया, वो जैसे प्राणी जैसा हो गया, वो इमोशनलेस हो गया। क्योंकि वो उसकी कुछ साइड इफेक्ट्स थी, मेडिसिन से वो अच्छा हो जाएगा, डिस्ट्रक्टिव है, चिल्ला रहा है ना, उसको भ्रम हो रहे हैं
जी।
वो तो खत्म हो गए, लेकिन उसकी हाथ की मूवमेंट, दूसरा चेहरे के हाव भाव, उस पर भी उसका प्रभाव पड़ता था।
अच्छा।
परंतु अब जो नई दवाइयाँ हैं, जैसे भी एक आमतौर पर दो रूप से कहते कि टिपिकल और अटिपिकल, अभी जो नई दवाइयाँ है वो अटिपिकल है और उसमें भी डिफरेंट लेवल्स है।
ओके।
है ना, जो कुछ दवाइयाँ पहले की अभी नई दवाइयाँ भी आई, दे आर वेरी गुड, है ना, उसमें साइड इफेक्ट्स बहुत कम है।
ओके।
हाँ, तो मतलब अच्छे डॉक्टर के पास जा करके सही मात्रा में दवाई लेनी चाहिए
जी।
ये नहीं कि उसकी साइड इफेक्ट होती है।
करेक्ट।
है ना, क्योंकि दे आर वेरी गुड। सिर्फ क्या है, मैंने बार बार कहा है वास्तव में कि जो पेशेंट ठीक होते किसको बताते नहीं कि हम ठीक हो गए।
करेक्ट।
है ना, हम जो ठीक नहीं हुए और उसका कारण वो मरीज है या तो उनके रिलेटिव है कि उन्होंने ठीक से ट्रीटमेंट नहीं की, तो इसके कारण वो क्रॉनिक किससे हुए।
ओके।
और वही हम देख रहे हैं।
करेक्ट।
है ना, सिंपल कहूंगा, जैसे भी कि ब्रेन का ऑपरेशन होता है, ब्रेन में ट्यूमर होगा, आप तुरंत ऑपरेशन कराएंगे। चलो हार्ट की सर्जरी आज कितनी कॉमन है।
बिल्कुल।
कि भी बाईपास हुआ, अपने एंजियोग्राफी की, डॉक्टर कहते हैं कि 80% ब्लॉक, ऑपरेशन कराओ, दूसरे दिन आप ऑपरेशन करा लेते हैं।
बिल्कुल।
है ना, ज्यादा सोचते नहीं, उसमें नहीं सोचते कि भी वो मेरा कोई रिलेटिव था, वो ऑपरेशन में कॉम्प्लिकेशन हो गया था, मैं कभी नहीं कराऊंगा। तो ऐसे इसमें समझो कि भी 1000 में 1 पेशेंट का कुछ आगे पीछे हुआ तो हमें डरना नहीं है।
बिल्कुल।
उल्टा इसमें तो ये है कि दवा नहीं लेंगे तो ज्यादा हार्मफुल है।
अच्छा, इतनी इम्पोर्टेंट है वो।
हाँ,
दवाइयां
कि भी आप नहीं लो तो एक तो पेशेंट के सारे बॉडी पर वो हार्म कर रहे हैं।
Okay.
आगे चल के जैसे मैंने कहा कि वो क्रॉनिक हो जाएगा, लंबा चलेगा, फिर तो जीवन भर चलेगा। है ना, फिर सिर्फ आप उसको कंट्रोल ही कर पाएंगे।
करेक्ट।
और फिर आपको भी पूरा सहन करना है, ऐसा पेशेंट आपके साथ है तो कितनी समस्या है।
बिल्कुल।
तो इससे अच्छा जितना जल्दी हम नोटिस करें, सही डॉक्टर के पास जाओ, भले ये भी कहो कि डॉक्टर कम से कम दवाई दो,
बिल्कुल
है ना, तो ऐसा करके एक तो उसको ठीक कर रहा है। जो मैंने कहा कि भी पहली दवाई, अभी जनरेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ऐसा काउंट कर सकते हैं, भले बोला नहीं जाता है, आमतौर पर नहीं कहते, लेकिन कहेंगे ऐसे
okay.
एक तो दवाई ये बहुत अच्छी है जब और दवाइयां काम नहीं करती है
जी.
ना इसको कहते हैं क्लोजापिन, कि जो वंडर कर सकती है, सिर्फ उसमें कई बार ब्लड पर इफेक्ट होने की संभावना है कि सफेद कणिकाएं होती है ब्लड में, वो कम हो जाती, लेकिन चेक करते रहो तो नहीं होता है
okay.
मेरे एक भी पेशेंट को अब तक नहीं हुआ, हम चेक कर रहे थे और समझो कम हुआ तो दवाई बंद कर दो,
बिल्कुल
तो ऐसे दिक्कत नहीं होती, और तो दवाइयां लेनी है और सही ड्यूरेशन, जो पूरा ड्यूरेशन ठीक से बताया गया हो वो ड्यूरेशन तक लो, अपने आप ऊपर नीचे नहीं करो उसको।
डॉक्टर साहब, इसमें मैंने सुना है खास करके स्किज़ोफ्रेनिया के अंदर में कि शॉक ट्रीटमेंट्स भी दी जाती हैं पेशेंट्स को, वो किस स्टेज पर आकर दी जाती हैं?
कि जब ये सब दवाइयां काम ना करें।
अच्छा
ना, पूरा समझो आपने करीब डिफरेंट जनरेशन का है ना, कि आपने दो या तीन दवाइयां फुल मात्रा में, क्योंकि उस कंप्लीट मात्रा तक पहुंचने में भी टाइम लगेगा
okay.
वो भी पूरा किया फिर भी उपयोग नहीं हुआ, तो फिर अभी है ना शब्द ही गलत है।
अच्छा,
अभी कई बार हमने अच्छे अच्छे शो में लोगों को बोला कि शॉक ट्रीटमेंट, तो शब्द ही गलत है।
अच्छा,
अभी इसका एक्चुअल नाम है ECT
okay.
इज इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी, है ना okay. उसके बारे में भी बताता हूँ, उससे पहले थोड़ा सा आपको मेडिसिन के बारे में बताता हूँ कि जो मेडिसिन है वह एक्चुअली वंडर्स कर सकती है। एक तो जो डॉक्टर कहे उससे कम मात्रा में नहीं देनी है।
अच्छा,
आमतौर पर रिलेटिव्स कम देते हैं। दूसरी, ये एक जनरल राय, शायद सब इसको एक्सेप्ट ना भी करे, मैंने जो अनुभव में देखा है कि ये पेशेंट अभी तो कहेंगे कि मैं दवाई ले रहा हूँ, परंतु वह करीब एक साल तो चलनी है, तो हो सकता है कि 6 महीने के बाद कहेगा कभी क्यों लूंगा, अभी दवाई नहीं लूंगा मैं, तो फिर बड़ी दिक्कत होती okay. फिर शायद ले भी लेगा, मुंह में 1 घंटे तक रखेगा वो, और जब उसको चांस मिलेगा थूक देगा।
अच्छा,
तो सबसे अच्छा इसका मैंने जो तरीका ढूंढा है कि भी इसको दूध में या कहीं पे भी भले पाउडर कर दो, है ना, उसमें पिघला दो, शायद पूरा डिजोल्व ना भी हो, लेकिन वो करके फिर उसको बोलो तुमको दूध पी जाना है
okay.
है ना, तो पक्का समझ में आएगा
करेक्ट
कि पेशेंट ले रहा है या नहीं, क्योंकि फिर बहुत दिक्कत हो सकती है। तो इसके कारण ये नियम अगर हमेशा अपनाया जाए तो बहुत ही अच्छा है। तो ये नाम ही गलत है
okay.
मैंने अच्छे अच्छे शो में भी सुना है
जी,
कहते शॉक ट्रीटमेंट, एक्चुअली शॉक ट्रीटमेंट बोलना ही नहीं है, इसका पूरा जो नाम है वह है ECT, इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी, है ना
okay.
और जो हम फिल्म में देखते हैं ना वो बिल्कुल गलत है, पता मुझे नाम याद नहीं आता, कई फिल्मों में होता है कि वो पागल उसको पकड़ के सुलाते, 4 लोग पकड़ते और शॉक लगाते है ना, वैसा बिल्कुल नहीं है।
अच्छा,
ये दो बातें हैं, एक तो अभी ये जो ट्रीटमेंट दी जाती है वो एनेस्थेसिया में दी जाती है, बस 2 मिनट के लिए, जैसे भी ऑपरेशन के लिए एनेस्थेसिया दिया जाता है ऐसे 2 मिनट के लिए एनेस्थेसिया देते, तो पेशेंट को तो पता ही नहीं है ना, कई बार तो बोलने की भी जरूरत है, रिलेटिव्स को बताना जरूरी है, एक तो ये बात है, तो भी उनको कोई दर्द नहीं होना है।
अच्छा।
और दूसरा, जो अभी प्रेजेंट इंस्ट्रूमेंट्स है बहुत अच्छे है।
अच्छा।
जिसको कहा है ब्रीफ पल्स
जी,
कि जो बहुत ही अच्छे है, जिसके अंदर एक जो कॉमन साइड इफेक्ट है ECT की मेमोरी लॉस, तो वो भी वहां पर कम है, पर है भी तो वो आधा घंटा है, ज्यादा नहीं है, विद इन हाफ एन आवर पेशेंट एकदम नॉर्मल होता है, सब कुछ अपना काम ठीक से करता है, परंतु जो बेनिफिट है बहुत बड़ा है।
अच्छा,
आज हमने पेशेंट देखे हैं कि जो इतने वाइल्ड है, अभी आप देखो तो सब काम नॉर्मली कर रहे हैं, अच्छे से कर रहे हैं
जी,
सिर्फ ये है कि भी वो पहला ही नहीं, भी किसको दिक्कत हो,
नहीं
भाई पेशेंट थोड़ा वाइल्ड हो गया समझो, तुरंत ये नहीं बोलो कि इसको एडमिट करो ECT देंगे, वो ठीक नहीं है, है ना, कई लोग करते हैं ऐसा, परंतु ठीक नहीं मानेंगे कि पहले मेडिसिन्स को ट्राई करो,
बिल्कुल
है ना, हो सकता है कि एकदम ठीक हो जाए
ओके।
और वो भी एक नहीं, दो तीन मेडिसिन अपने डिफरेंट ट्राई की
जी,
एक सफिशिएंट ड्यूरेशन के लिए, फिर भी काम नहीं की, तो फिर ईसीटी को ट्राई कर सकते हैं।
okay.
या तो वो इतना हैवी है, जैसे वो जो उसको अटैक है वो इतना हैवी है कि जब हम शुरू में मेडिसिन देते, इंजेक्शन देते, तो भी वो पेशेंट रिलैक्स नहीं हो रहा है, तब फिर वो जरूरी है ना। और जब अगर एक बार ईसीटी दे रहे हैं तो उसको फुल कोर्स है वैसे देना है ना, बीच में से नहीं छोड़ना है, और उसके बाद भी फिर मेडिसिन जरूरी है, ऐसा नहीं उसके बाद मेडिसिन जरूरी नहीं है।
अच्छा।
हाँ, उसके बाद फिर मेडिसिन जरूरी है, भले मात्रा कम हो जाएगी ना, तो उस अनुसार देनी है।
बिल्कुल।
ये भी संभव है, अब नहीं, जैसे हर मरीज में डिफरेंट हो सकता है कि वो मरीज को शायद दो तीन महीने के बाद फिर से एक आधी सीटी की जरूरत पड़े।
अच्छा।
तो इन्हें समझो कि हम कुछ बहुत गलत कर रहे हैं, है ना। एक जैसे और ट्रीटमेंट है, ऐसे ही एक ट्रीटमेंट है, अभी भी एग्जैक्ट पता नहीं कि कैसे होता है
जी,
कि वो ब्रेन के केमिकल्स को चेंज करता है ना। थोड़ा ये भी संभव है कि वो जो उसका डीप स्ट्रेस है उसको एक बार व्यक्ति भूल जाता है।
ओके।
तो फिर वो नॉर्मल स्ट्रीम लाइन में सोसाइटी में वो नॉर्मलनेस से आ जाता है।
बिल्कुल।
तो जहाँ जरूरी है वहाँ अच्छा ही है
जी। डॉक्टर साहब, इन मेडिसिन की अगर हम बात करें, मैंने सुना है कि इनके साइड इफेक्ट्स बहुत ज़्यादा होते हैं और इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं कि आपको उसकी आदत पड़ जाती है, तो ऐसे में आपकी क्या राय है कि मेडिसिन देना ज़रूरी है इस स्टेज पर या कोई और ऑप्शन भी है?
नहीं, बहुत अच्छा। देखो आपके दोनों क्वेश्चन अच्छे हैं कि भी एक तो ये है कि इसकी आदत पड़ती है
जी,
तो कुछ दवाइयों की आदत पड़ती है।
Okay.
लेकिन वो दवाइयाँ अच्छे डॉक्टर थोड़े समय के लिए ही देंगे, लंबा नहीं देंगे
जी,
है ना। तो इसके कारण जिसकी आदत नहीं पड़ती हो तो लेनी है।
बिल्कुल।
आप भले डॉक्टर को बता दो कि अगर इसकी आदत पड़ती है तो मुझे बताइए, मैं थोड़ा टाइम ही लूंगा। सिर्फ ये है कि भी जिसकी आदत नहीं भी पड़ती है अचानक बंद नहीं करनी है।
okay.
क्योंकि आपने 20 दिन ली, 21वें दिन दवा नहीं है, अभी मैं नहीं ले रहा हूँ। वो हमेशा हम बताते हैं कि एक बफर के रूप में आप रखो।
okay.
है ना, 7-8 दिन की दवा अपने पास रखो, ताकि आपको पता है कि भी लास्ट मोमेंट मुझे भागा दौड़ी नहीं करनी है दवाई खरीदने के लिए। एक तो ये बात, और फिर जब भी कम करनी है धीरे धीरे उसको कम करनी है, तो ऐसे धीरे धीरे कम करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं।
okay.
सिर्फ अभी ना कौन सी दवा कम करनी है वो डॉक्टर पर छोड़ना है
जी।
और कई बार लोग साइकेट्रिस्ट के पास ये सोचते हैं तो जाते इतना सही कम करते, वो तो हर बार वही दवा देते हैं।
करेक्ट
ना, तो है कि आवश्यक हो सकता है कि उसी दवा की जरूरत है, वो थोड़ी सी कम होगी, है ना। ये पूछना आवश्यक है क्योंकि वो थोड़ा सा चेंज भी जरूरी है।
ओके।
समझो आपकी 3 दवाइयां हैं, कौन सी कम करनी है वह डॉक्टर सही रूप से डिसाइड कर पाएगा।
करेक्ट।
तो इसके कारण डॉक्टर की राय लेना जरूरी है। और दूसरा जो कहते हैं कि साइड इफेक्ट्स होती है
जी,
तो अभी एक तो है कि जो पुरानी दवाइयां हैं कि जिसमें अगर वो लंबा समय चले तो एक बीमारी होती थी कि भी हाथ कांपने लगेंगे, जैसे आपने कईयों को देखा हाथ हिल रहे हैं उनके, वो फिर जीवन भर चलेगा।
ओ।
हाँ, इसलिए वो दवाइयां तो लंबा नहीं देनी है, आजकल लंबा नहीं देते, तो वो प्रॉब्लम नहीं होना है। और जो भी नई दवाइयां हैं उसमें जो सबसे बड़ी साइड इफेक्ट है कि वेट गेन होता है।
अच्छा।
हाँ, वजन फटाफट बोलते हैं, अरे 15 दिन में 6 किलो वजन मेरा बढ़ गया।
ओ।
तो पहले से अगर बताया जाए, चाहे तो ये नहीं भी बताओ, क्योंकि कहीं तो इतने कॉन्शियस होते हैं कि वो कभी नहीं लेंगे, चाहे तो बोल पहले नहीं भी होता, परंतु तो कुछ बातें बताओ ना, कुछ बातें अगर उनको उस समय बताई जाए कि जैसे भी ये दवाई के साथ है ना, आपको सैलेड जरूर खाना है, ये भी बोलते कि भी रात का खाना कम से कम खाना है।
बिल्कुल।
तो वो भी वेट को कम करने में मदद कर दिया, तो वेट को बढ़ने नहीं देगी।
बिल्कुल।
और थोड़ा भी बढ़े तो फिर तो प्रैक्टिकल उनको बताइए सब कुछ कि कैसे एक्सरसाइज करनी है और चीजें क्या करनी है कि जिसके कारण वेट गेन ना हो।
डॉक्टर साहब, आप ये कहना चाह रहे हैं कि इन मेडिसिन का इस साइड इफेक्ट में वजन बहुत ज्यादा बढ़ने लगता है।
वो सबसे बड़ा और मेजर, कईयों को तो दवा सचमुच ही बंद करनी पड़ती, इतना बढ़ जाता है।
अच्छा।
हाँ, और मतलब है ना, वो तो डॉक्टर ध्यान देता है। जैसे कुछ दवाइयां आई कि जो ब्लड प्रेशर को बढ़ाती है तो नहीं देंगे, भी कुछ दवाइयां जो डायबिटीज पर बुरा असर करती है, कुछ है वो थायराइड पर बुरा असर करती है, कुछ दवाइयां है जो ब्लड है हमारे में व्हाइट ब्लड सेल्स पर बुरा असर करती है, तो दवाइयां नहीं देंगे, है ना। जो डायबिटिक प्रोन है उनको भी वो दवाइयां नहीं दी जाती, थोड़ा सा भी है तो उनको नहीं दी जाती। आपको डायबिटीज नहीं है तो नहीं होगा, सिर्फ वो प्रिकॉशंस लेने हैं कि भी एक्सरसाइज करनी है, डाइट कंट्रोल करना है, वेट को कम रखना है, ये सब आप प्रिकॉशंस लेंगे तो फायदा बहुत बड़ा है।
बिल्कुल डॉक्टर साहब, हमने इस बीमारी के बारे में संक्षेप में काफ़ी कुछ जान लिया है, हमें जानकारी मिल गई है कि इसके टाइप्स क्या क्या हैं, हमने ये भी जान लिया कि इसके साइड इफेक्ट्स क्या है, उसके प्रकार क्या है और एग्जैक्टली ये बीमारी है क्या। अब मैं ये जानना चाहती हूँ डॉक्टर साहब कि क्या मेडिटेशन या ब्रह्मा कुमारी जो मेडिटेशन सिखाती है, क्या वो हेल्प करता है इस बीमारी से बाहर निकलने में?
कि वो डेफिनेटली हेल्प करेगा, परंतु अभी सबसे पहले तो कि भी ऐसे पेशेंट्स को ही मेडिटेशन सिखाए कि जो रियलिटी को समझ रहा है।
ओके।
आमतौर पर वो समझ भी नहीं पाएगा, क्योंकि जो राजयोग है उसमें तो ज्ञान को समझना है ना, आत्मा का ज्ञान समझना है, परमात्मा का ज्ञान समझना है, आपको खुद मेडिटेशन करना है ना, वो एक तो ठीक से कर नहीं पाएगा। अगर ऐसी स्थिति है तो उनको नहीं कराइए, एक बार नॉर्मल होने दीजिए, मेडिसिन से और ट्रीटमेंट से और नॉर्मल हो जाए, है ना, फिर उसको मेडिटेशन सिखा सकते हैं। सिर्फ टू मच नहीं करना है, हमने पहले भी डिस्कस किया था कि ये लोग बहुत ज्यादा करने लगते हैं और फिर दिक्कत हो सकती है। अन्यथा अगर सही रूप से मेडिटेशन किया जाए, कोई मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट भी उसको देखता रहे कि उसमें क्या चेंजेस हो रहे, उसके विचारों में क्या परिवर्तन आ रहा है, कैसे हो रहा है, तो इट कैन डू वंडर। एक तो मुझे आश्चर्य हुआ, हमने भी चर्चा की है बाबा टेक्निक, कि जब आपको विचार आते तो उसको स्टॉप करो, है ना, ऐसा मैं कई बार बताता हूँ। तो जो कर पाए, सब लोग नहीं कर पाएंगे, जो एकदम जिसको कहे कि सत्यता के कनेक्शन में नहीं, वो व्यक्ति नहीं कर पाएगा, लेकिन जो अधिकतर नॉर्मल हुए हैं तो वो इन चीजों को कर पाएंगे। सिर्फ मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट की जरूरत है,
बिल्कुल,
है ना, अन्यथा कहीं बड़ी दिक्कत हो सकती है। हमको लगे कि ये तो बहुत अच्छा ध्यान कर रहा है, लेकिन हो सकता है कि वो तो अपनी दुनिया में है, है ना, कुछ और नेगेटिव में जा रहा है वो, तो वहां कोई एक्सपर्ट उस चीज को जज कर पाएगा। और बहुत बड़ा बेनिफिट भी है, क्योंकि ये कहीं ना कोई कॉन्फ्लिक्ट है। मैंने बताया भी था कि जब भी स्ट्रेस आता है कि उसको हम सही रूप से हैंडल नहीं कर पाते, जो सिक्सोफ्रेनिया है वो कहेंगे कि वो एक एबनॉर्मल तरीका है स्ट्रेस को हैंडल करने का, ना, उससे वो तनाव तो आपके सामने नहीं है, परंतु जो समस्या है उससे भी बड़ी है, अपने तनाव से भी बड़ी बीमारी मोल ली
जी,
आपको पता ही नहीं है कि ऐसा ऐसा हुआ। तो वहां अगर जब एक व्यक्ति नॉर्मल हो जाए और फिर अच्छे से मेडिटेशन करे, तो वो रियलाइजेशन में उसको काफी हेल्प मिल सकती है
जी,
और वो रियलाइजेशन उसको सचमुच हेल्प मिले कि भाई ये इसका कॉज है, मेरा जो मूल कारण स्ट्रेस का है यहाँ पर है
जी,
और उसको मुझे दूर करना है।
बिल्कुल,
ऐसे नहीं वो मैं दूर कर दूंगा तो ठीक हो जाऊंगा।
डॉक्टर साहब, जितना मैं समझ पा रही हूँ, ये बीमारी में अगर हम पॉजिटिव अप्रोच रख के नेगेटिव थॉट्स को जितना हो सके कम करें, तो ऑटोमेटिकली हम इस बीमारी से विद हेल्प ऑफ मेडिसिंस एंड प्रॉपर मेडिकेशन के साथ में हम ठीक भी हो सकते हैं।
नहीं, आपकी बात भी बिल्कुल सही है कि भी पॉजिटिव अप्रोच, लेकिन उससे भी थोड़ा जो डीप हम देखेंगे कि कॉज,
ओके,
है ना, उसके पीछे कोई कॉन्फ्लिक्ट है,
ओके,
है ना, हर केस में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ है जरूर। ये मैं भी मानता हूं कि 30-40% केसेस हो सकते हैं कि जो प्योरली जेनेटिक है, कि भी जिसमें कोई भी बात मिल नहीं रही है, कितना भी हम डीप जाते हैं, है ना, तो हम ये कह सकते हैं कि भी इसमें शायद कि भी उसके कहेंगे कि ब्रेन के केमिकल्स ही ऐसे थे, कि भी सॉइल ऐसी थी
जी,
है ना, कोई बीज नहीं पड़ा
जी,
है ना, सॉइल अच्छी नहीं थी, उसके कारण उसको ये दिक्कत हुई। अन्यथा तो उसमें कहीं ना कहीं कॉज मिलेगा, और जहां मेडिटेशन हेल्प करेगा
बिल्कुल,
और मेडिटेशन तो ऐसे भी हेल्प करेगा कि आपको पता भी नहीं है कि क्या कॉज है, क्योंकि जो भी आप कारण देखेंगे ना उसमें एक बहुत बड़ी चीज है इंटरपर्सनल रिलेशनशिप।
ओके,
ना कहीं पे भी माता पिता का प्यार, भाई बहन का, पति पत्नी का, है ना। तो जब हम मेडिटेशन करते हैं तो टोटली सर्व संबंध परमात्मा से जुड़ाते हैं।
ओके,
और परमात्मा से सर्व संबंधों का प्यार मिलता है तो बात ऑटोमेटिकली समाप्त हो जाएगी,
क्योंकि कहीं ना कहीं जो खालीपन है उसे ईश्वरीय प्यार भर देता है।
या तो कहेंगे कि जो नीड है
जी,
कि भी आत्मा को सातों गुणों की जरूरत है, शांति, प्रेम, आनंद, पवित्रता, सुख, है ना, शक्ति, उसमें प्यार बहुत बड़ी चीज है
बिल्कुल,
ना तो वहां नहीं मिला लेकिन परमात्मा से वो प्यार मिला
बिल्कुल,
है ना, तो जो जरूरत थी वो मिल गई। अगर एग्जांपल देना हो सिंपल सा कि भी हम जो खाना खाते हैं फिजिकल हेल्थ के लिए
जी,
कि भी आप में प्रोटीन की कमी है, प्रोटीन की कमी के कारण आपको बीमारी हुई, तो अगर प्रोटीन दिया जाए भले और रूप से दिया जाए
जी,
है ना, कि फॉर एग्जांपल कि भी एक रूप से आप नहीं ले रहे दूसरे रूप से लिया, लेकिन प्रोटीन मिल गया तो आप स्वस्थ हो जाएंगे
बिल्कुल,
तो ऐसे प्यार मिल गया तो आप स्वस्थ हो जाएंगे।
बहुत अच्छा, बिल्कुल
जी, तो ऐसे नहीं, स्पिरिचुअलिटी इस रूप से है, और भी काफी डीप चीजें है।
अच्छा।
जब हम करने लगते हैं ना तब तो वो पूरा पता चलता है कि भी कैसे हम अवेयरनेस से जो अंदर में क्या चल रहा है उसको फाइंड आउट कर सकते हैं
बिल्कुल,
कि जो थेरापी में सालों के बाद होता है वो मेडिटेशन में एक महीने में भी हो सकता है अगर ठीक से मेडिटेशन किया जाए।
डॉक्टर साहब, आप साइकियाट्रिस्ट हैं, साथ ही साथ में आपने स्पिरिचुअलिटी को भी अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाया है, तो आई थिंक यू आर द बेस्ट पर्सन जो बता सकते हैं इस बात को कि कॉम्बिनेशन ऑफ स्पिरिचुअलिटी एंड मेडिकल हेल्प तो ही इस बीमारी से हम बाहर निकल पाएंगे।
नहीं, आपने परफेक्ट दिया कि भी एक चीज नहीं, दोनों करनी है,
दोनों की दोनों करनी है और सही मात्रा में करनी है।
परफेक्ट।
और आई थिंक यू आर द बेस्ट पर्सन जो बता सकते हैं पेशेंट्स को कि राइट टाइम राइट डोजेज के साथ में वो इजीली पूरी तरह से इस बीमारी से बाहर भी निकल सकते हैं।
हाँ।
साथ ही साथ डॉक्टर साहब, इन पेशेंट्स को ट्रीटमेंट के लिए कन्विंस कैसे किया जाए, क्योंकि ये बात तो पक्की है कि आपको एक साइकियाट्रिस्ट के पास जाना है, ये थॉट अगर पेशेंट को बता दिया जाए तो वो डर जाते हैं कि मैं, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं क्यों जा रहा
हूँ।
तो एज अ रिलेटिव मेरा क्या रोल होना चाहिए जिससे मैं समझा सकूँ अपने पेशेंट्स, अपने जो रिलेटिव है, कि डॉक्टर के पास जा रहे हैं हम ठीक हो जाएंगे, उसके लिए जा रहे हैं, तो एज अ रिलेटिव आपकी क्या रोल होना चाहिए?
अच्छा, हाँ, देखो बहुत सारी चीजें संभव है। एक तो उसको प्यार से समझाया जाए, है ना, कि भी सपोर्ट दिया जाए कि हम सिर्फ एक ओपिनियन के लिए जा रहे हैं, फिर आपको दवाई नहीं लेनी है तो नहीं लेना, है ना, कि भी ये क्या है, आपको ये दिक्कत हो रही है परंतु क्या है, तो एक मान सकता है। दूसरा, कई बार तो हमने ऐसा भी देखा है कि वह तो नहीं कहेगा कि मैं पागल थोड़ी हूँ, तो ये भी बोला जा सकता है कि भाई मुझे कुछ डिस्टर्बेंस है, कोई भी रिलेटिव कहे कि तुम सिर्फ मेरे साथ चलो, और वो साथ चले और पहले से अगर डॉक्टर को बताया गया है, अगर डॉक्टर समझदार है तो पूरा ये वो इनडायरेक्टली उसको कॉन्फिडेंस में ले सकता है।
ओके,
है ना, उसको कॉन्फिडेंस में लेके कन्विंस करके दवाइयां दे सकता है। या दूसरा ये भी संभव है कि इनिशियली अननोइंगली भी दी जाए।
अच्छा, हाँ, आपने कहा था
शुरू में
मिल्क या वाटर के अंदर डालकर
शुरू में, और फिर अधिकतर पेशेंट्स मानने लगते हैं। लास्ट उपाय है कि जब कुछ नहीं होता है, कि वो एकदम डिस्ट्रक्टिव है, वायलेंट है, तो फिर एडमिशन जरूरी है।
okay.
है ना, उसमें भी डरना नहीं है कि मैंने रिलेटिव्स डरते हैं, सबको मालूम पड़ जाएगा, आस पड़ोस में ये हो जाएगा, ऐसा होगा, हमारी बदनामी होगी, कैसे एडमिट करे, परंतु लगे कि भी ये बहुत जरूरी है तो फिर एडमिट करना चाहिए। नहीं, उसमें भी ये देखा गया है, एक तो भी एम्बुलेंस भी ले आते, इंजेक्शन दे के भी ले जाते, ईजी है, मुश्किल नहीं है।
Okay.
और दूसरा, अगर कोई भी तरीके से वहाँ हॉस्पिटल तक आप ले जाओ तो फिर देखा, फिर पेशेंट एकदम शांत हो जाता है।
okay.
हाँ, घर में तो बहुत चिल्ला रहा है, आपको लगेगा इम्पॉसिबल है, लेकिन एक बार वहां अंदर एंटर हुआ फिर अधिकतर वो शांत हो जाते हैं
okay.
और नहीं भी हुआ तो फिर तो उसके तरीके है कि किस प्रकार से उसको हमने प्रॉपर ट्रीटमेंट कर सके, और वो ह्यूमैनिस्टिक होती है ना, अच्छी ट्रीटमेंट होती है.
करेक्ट डॉक्टर साहब, आज हमने एक ऐसी बीमारी के बारे में जाना जो जिसका नाम है स्किज़ोफ्रेनिया. हमने ये जाना कि इस बीमारी के अंदर में सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम डॉक्टर को कंसल्ट करें, साथ ही साथ स्पिरिचुअलिटी को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं. जरूरी नहीं है कि पहले स्टेज पर करना है, जैसे जैसे हीलिंग होने लगेगी और अगर हम स्पिरिचुअली साउंड बनते जाएंगे, मेडिटेशन करेंगे, तो हम पूरी तरह से इस बीमारी से हील हो सकते हैं. थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, थैंक यू फॉर कमिंग इन दिस शो.
ओम शांति. ओम शांति.
दोस्तों, आज हमने एक ऐसी बीमारी के बारे में जाना जिसके बारे में शायद हमने पहले कभी सुना नहीं है, जिसका नाम है स्किज़ोफ्रेनिया. हमने जाना कि किस तरह से इस बीमारी से अगर बाहर निकलना है तो मेडिकल हेल्प के साथ साथ मेडिटेशन बहुत ज़्यादा मदद करता है. कुछ स्टेज तक, जब तक रियलिटी से ये जो पेशेंट है वो पूरी तरीके से रूबरू हो जाए, उसके बाद में अगर वो मेडिटेशन करें तो ईश्वरीय हीलिंग के द्वारा वो पूरी तरह से अपनी बीमारी से बाहर निकल सकते हैं. इस बात के साथ आज के प्रोग्राम को एंड करते हैं. आपसे फिर मिलेंगे आपके ही शो में, जिंदगी बने आसान. ओम शांति.